एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक बहुत ही अहम किताब पर बात करने वाले हैं, वीएस नायपॉल की इन अ फ्री स्टेट।
हाँ, 1971 में इसे बुकर प्राइज मिला था और ये किताब वाकई बहुत परतें हैं इसमें।
नायपॉल खुद भी, मतलब उनकी पहचान कई दुनिया में बटी हुई थी, त्रिनिदाद में जन्म, भारतीय जड़े, फिर इंग्लैंड का माहौल।
बिल्कुल,
और ये चीज उनके लेखन में साफ झलकती है, वो तनाव, वो खिंचाव।
उनकी भाषा भी एकदम सटीक, सीधी, कई बार चुभने वाली भी लगती है।
हाँ, मनोवैज्ञानिक गहराई तो बहुत है, और उन्हें महान निराशावादी भी कहा जाता है, शायद इसलिए कि वो जो पोस्ट कॉलोनियल समाज थे उनकी असलियत दिखाते थे बिना किसी लाग लपेट के।
सही कहा, और ये किताब भी देखिए कोई सीधी सादी कहानी की तरह नहीं चलती।
नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका स्ट्रक्चर ही अनोखा है, एक प्रस्तावना है, फिर एक उपसंहार,
और बीच में दो अलग कहानियां और एक छोटा नॉवेल।
हाँ, और ये बिखरा हुआ ढांचा ही शायद उस दौर की कहानी कहता है, बिखरे हुए लोग, बिखरा हुआ समय, उपनिवेशवाद खत्म हो रहा है, पर सवाल ये कि क्या सच में आजादी मिली?
यही तो, किताब का नाम भी यही है, इन अ फ्री स्टेट, एक मुक्त अवस्था, पर ये कैसी मुक्ति है?
हाँ, जो अपने साथ इतनी चिंता लाती है, अकेलापन, जड़ों से उखड़ने का दर्द, एक नैतिक उलझन भी।
तो लगता है नायपॉल पूछ रहे हैं कि बाहरी आजादी क्या काफी है, अंदरूनी आजादी का क्या?
बिल्कुल, और आज की हमारी चर्चा का मकसद भी यही है, इसके किरदारों को समझना, उनकी यात्राओं को देखना।
हाँ, ये देखना कि नायपॉल क्या कहना चाह रहे हैं। ये किताब दिखाती है कि भाई राजनीतिक आजादी मिल गई, ठीक है, पर मन की आजादी,
वो एक अलग चीज है। नायपॉल के पात्र कहीं भी चले जाएं दुनिया में, पर वो एक अनदेखी जंजीर से बंधे हैं। अतीत है, डर है, नस्लवाद है, वो गहरा वाला अकेलापन।
तो चलिए मिलते हैं इन किरदारों से, आम लोग हैं, हीरो नहीं।
हाँ, अपनी कमजोरियों के साथ, पर उनकी कहानियां उस दौर की बड़ी सच्चाई बयान करती हैं। सब एक मुक्त अवस्था में जी रहे हैं, जो राजनीतिक भी है और रूहानी तौर पर वीरान भी।
अच्छा, तो शुरुआत संतोष से करते हैं। पहली कहानी वन आउट ऑफ मैनी, क्या है उसकी दुनिया?
देखिए, संतोष बंबई में अपने मालिक की नौकरी करता है और खुश है। उसकी दुनिया सीमित है, पर उसमें एक ठहराव है, उसकी एक जगह है।
हाँ, एक तरह का कंफर्ट जोन।
बिल्कुल, फिर मालिक उसे अपने साथ वॉशिंगटन डीसी ले जाता है। अब अमेरिका में वो शारीरिक रूप से तो आजाद है, पर अंदर से
खो गया है
एकदम। वो शहर, वो कल्चर, और खासकर जैसा वो उन्हें कहता है, हुबशी, मतलब काले अमेरिकी, उनसे उसका डर, ये सब उसे जकड़ लेता है। अकेलापन तो जैसे उस पर हावी हो जाता है।
तो ये आजादी उसके लिए एक जंगल बन जाती है जिसमें वो रास्ता भूल गया है।
हाँ, और फिर इस भटकाव से निकलने के लिए, या कहें कि वहां टिके रहने के लिए, वो क्या करता है?
ग्रीन कार्ड के लिए।
हाँ, वो एक काली अमेरिकी महिला से शादी कर लेता है, जो एक रेस्टोरेंट की मालकिन भी है। ये शादी प्यार नहीं, एक सौदा है।
और मालिक से जब वो औपचारिक रूप से अलग होता है, वो पल भी भारी होगा।
बहुत ज्यादा, जैसे वो अपनी पुरानी दुनिया, अपनी पहचान, सबसे नाता तोड़ रहा हो। अंत में क्या होता है? वो रेस्टोरेंट का मालिक है, स्वतंत्र है, शायद अमेरिकी नागरिक भी बन जाए, पर अंदर से वो खत्म हो चुका है।
उसकी आत्मा मर चुकी है।
हाँ, वो खुद कहता है, मैं यहां आने तक दुनिया में बहुत खुश था, अब मैं एक भूत हूं।
उफ।
और एक जगह वो सोचता है, मैं कभी प्रवाह का हिस्सा था, फिर मैंने एक दिन आईने में देखा और मुक्त होने का फैसला किया। ये मुक्ति उसे, मतलब पहचान ही छीन लेती है।
मुक्ति उसे पहचान विहीन बना देती है। ये बात बहुत गहरी है, और ये शायद पूरी किताब का एक केंद्रीय भाव है। स्वतंत्रता एक बोझ भी बन सकती है।
बिल्कुल, संतोष की कहानी यही दिखाती है।
अच्छा, तो दूसरे किरदारों के जरिए नायपॉल इस थीम को और कैसे उभारते हैं? अगली कहानी है टेल मी हू टू किल, उसका कथावाचक।
हाँ, वो वेस्ट इंडीज से आया एक भारतीय मूल का आदमी है, लंदन आता है एक सपना लेकर।
क्या सपना?
अपने छोटे भाई डायो को पढ़ाने का। वो भाई की पढ़ाई के लिए, उसकी कामयाबी के लिए अपना सब कुछ लगा देता है, छोटी मोटी नौकरियां, गरीबी में जीना, मतलब खुद को पूरी तरह मिटा देता है।
भाई के लिए उसका प्यार एक जुनून बन जाता है।
जुनून से भी ज्यादा, एक ऑब्सेशन। वो अपनी पूरी पहचान ही भाई की कामयाबी में देखने लगता है, जो अभी हुई भी नहीं है।
और जब ये सपना टूटता है, जब भाई उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता।
हाँ, जब डायो पढ़ाई में फेल हो जाता है और ऊपर से एक अंग्रेज लड़की से शादी कर लेता है, बस कथावाचक की दुनिया ढह जाती है।
उसका बनाया हुआ महल,
हाँ, वो रेत का महल बिखर जाता है, उसकी पहचान का आधार ही खत्म हो जाता है। फिर वो इसका जिम्मेदार दूसरों को ठहराने लगता है और अंत में
हिंसा,
हाँ, वो उन लोगों पर हमला करता है जिन्हें वो जिम्मेदार मानता है। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। उसके आखिरी शब्द ही हैं, मुझे बताओ किसे मारना है।
ये तो अप्रवासी सपने का एक भयानक रूप है। पहचान कैसे उम्मीदों से बनती और बिगड़ती है।
बिल्कुल, ये दोनों कहानियां यही दिखाती हैं कि बाहर की दुनिया में आजादी खोजने की कोशिश कैसे इंसान को अंदर से तोड़ सकती है।
अच्छा, अब आते हैं किताब के केंद्रीय हिस्से पर, वो लघु उपन्यास इन अ फ्री स्टेट, और उसके मुख्य पात्र बॉबी और लिंडा। बॉबी कैसा है?
बॉबी एक गोरा अंग्रेज है, समलैंगिक है, अफ्रीका के किसी देश में, शायद युगांडा में, सरकारी नौकरी करता है।
हाँ,
पर अंदर से वो बहुत इनसिक्योर है, अकेला है, और इस कमी को छुपाने के लिए वो एक उदारवादी होने का दिखावा करता है।
जैसे वो अफ्रीकियों को समझता है, उनके साथ है।
हाँ, कुछ वैसा ही, पर असल में उसका नजरिया बहुत सतही है और कहीं ना कहीं वो औपनिवेशिक सोच अब भी हावी है।
और जो यात्रा वो करता है वो इस दिखावे की पोल खोल देती है।
बिल्कुल, वो लिंडा के साथ देश के अंदरूनी हिस्से की तरफ निकलता है, एक खतरनाक सड़क यात्रा, और ये सफर उसे आईना दिखाता है, उसकी बेबसी, उसका डर।
उसके उदारवादी सिद्धांत हवा हो जाते होंगे।
हाँ, जब असली खतरा आता है तो वो सब बातें भूल जाता है। फिर एक जुलू लड़के के साथ उसका एक अजीब सा वाक्या होता है, वो भी उसके अकेलेपन और उसकी मानसिकता को दिखाता है।
और फिर वो पिटाई वाला सीन।
हाँ, वो कहानी का चरम है, जब सरकारी सैनिक उसे बुरी तरह पीटते हैं। ये सब शारीरिक चोट नहीं है, ये उसके गोरे होने का जो एक अहम था, वो जो नैतिक श्रेष्ठता का भ्रम था, उसे चकनाचूर कर देती है।
वो अंदर तक हिल जाता है।
बिल्कुल, वो बाद में सोचता भी है, ये सिर्फ एक पिटाई थी, वे कुछ और नहीं करने वाले थे, वे पहले ही कर चुके थे। मतलब असल चोट उसके वजूद पर लगी थी, उसके गुमान पर लगी थी।
तो वो कंपाउंड पहुंचता तो है, पर एक हारे हुए इंसान की तरह। उसका किरदार दिखाता है कि कैसे वो उदारवादी उपनिवेशवादी सोच अंदर से कितनी खोखली और विरोधाभासी हो सकती है। अच्छा, और लिंडा, वो कैसी है?
लिंडा बॉबी के साथ काम करने वाले की पत्नी है। वो काफी तेज है, थोड़ी सार्कास्टिक है, और शायद अपने किसी निजी दुख से गुजर रही है।
वो बॉबी से अलग है।
हाँ, काफी अलग। उसे उदारवादी होने का कोई वहम नहीं पाले है। वो ज्यादा यथार्थवादी है, बल्कि निराशावादी कहना शायद ज्यादा सही होगा।
वो हालात को ज्यादा साफ देख पाती है।
हाँ, बिना किसी भ्रम के। वो एक अलग तरह की औपनिवेशिक उदासी दिखाती है। वो अपराध बोध वाली लिबरल नहीं, बल्कि एक थकी हुई उदासीन ऑब्जर्वर है, जिसे पता है कि चीजें ठीक नहीं है।
उनके आपसी रिश्ते में भी ये तनाव दिखता होगा।
बिल्कुल, चिढ़ भी है, थोड़ी चिंता भी है एक दूसरे के लिए, और कभी कभी बस मजबूरी का साथ। सफर में कई बार उसका वो भारी सख्त रवैया टूटता है और उसकी अपनी अंदरूनी तकलीफ और नाखुशी दिखती है।
वो भी कहीं ना कहीं फंसी हुई है।
हाँ, अपनी शादी में, एक प्रवासी पत्नी होने की स्थिति में, वो भी बॉबी की तरह अंत में उसी कंपाउंड की नकली सुरक्षित दुनिया में लौट जाती है, अपनी खामोश हताशा के साथ। शायद यात्रा ने उसे बदला नहीं, बस उसके बंधनों का एहसास गहरा कर दिया।
इन अलग अलग किरदारों और कहानियों को नायपॉल एक साथ कैसे लाते हैं? आपने शुरू में उस खंडित संरचना की बात की थी, प्रस्तावना क्या करती है?
प्रस्तावना का टाइटल है प्रयास में आवारा। इसमें कथावाचक, जो शायद नायपॉल ही हैं, ग्रीस जा रहे जहाज पर एक बूढ़े बदहवास अंग्रेज आवारा को देखते हैं। उसकी हालत बहुत खराब है।
और दूसरे यात्री?
वो उसे देखकर दया भी करते हैं, घृणा भी। एक ऑस्ट्रिया यात्री तो ये तक कह देता है कि ऐसे फालतू लोगों का कुछ करना चाहिए। ये टिप्पणी उस बेफिक्र क्रूरता का उदाहरण है।
तो ये छोटा सा सीन एक तरह से टोन सेट कर देता है।
बिल्कुल, जड़ों से उखड़े लोग, देखने वाले की असहजता, ताकतवरों की असंवेदनशील क्रूरता, और यूरोप का वो केंद्र से हटकर हाशिए पर चले जाना। ये आवारा पहला ऐसा पात्र है जो तकनीकी रूप से मुक्त है, पर पूरी तरह खोया हुआ।
ये प्रस्तावना मानो आने वाली कहानियों की आहट है। फिर संतोष की कहानी आती है, फिर लंदन वाले कथावाचक की, और उसके बाद वो मुख्य लघु उपन्यास।
हाँ, इन अ फ्री स्टेट। इसमें बॉबी और लिंडा राजधानी से निकलकर दक्षिण में बने सरकारी कंपाउंड जा रहे हैं। देश में तनाव का माहौल है, राष्ट्रपति और हटाए गए राजा के कबीलों के बीच संघर्ष चल रहा है।
और उनकी यात्रा का अनुभव कैसा रहता है?
वो पोस्ट कॉलोनियल बिखराव का लैंडस्केप है। टूटी सड़कें, खराब होटल, हवा में एक अनजाना खतरा। रास्ते में एक पुराना गोरा उपनिवेशवादी पीटर मिलता है, जो देश की बर्बादी का रोना रोता है। फिर वो एक भारतीय दुकानदार को भी लिफ्ट देते हैं, जो कबीलाई हिंसा से भाग रहा है।
और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, खतरा बढ़ता जाता है।
हाँ, जब वो राजा के कबीले वाले इलाके में पहुंचते हैं तो तनाव साफ नजर आता है। रोड ब्लॉक हैं, फौजी हैं, हिंसा के निशान हैं। बॉबी की कार्ड, जो पश्चिमी सुविधा का प्रतीक थी, अब बहुत असुरक्षित लगती है।
जुलू लड़के वाला वाकया भी होता है।
हाँ, और फिर वो फौजी चेकपोस्ट पर बॉबी की पिटाई, वो हिंसा का चरम है। आखिरकार वो कंपाउंड पहुंचते हैं।
वो कंपाउंड क्या है? एक सुरक्षित जगह?
हाँ, परदेशियों के लिए एक सुरक्षित घेरा, पर वो बाहरी अफ्रीकी सच्चाई से एकदम कटा हुआ है, एक नकली जन्नत जैसा। बॉबी और लिंडा अपनी अपनी नाउम्मीदी के साथ वहां लौट आते हैं। सफर खत्म, पर कुछ हल नहीं हुआ।
और किताब का अंत भी शुरुआत की तरह एक अवलोकन से होता है, उपसंहार।
हाँ, उपसंहार का नाम है लक्सर में सर्कस। कथावाचक मिस्र में है और वो देखता है कि दो जवान यूरोपियन टूरिस्ट वहां के लोकल लड़कों को परेशान कर रहे हैं। लड़के कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं और एक टूरिस्ट के हाथ में चाबुक है।
ओह,
कथावाचक कुछ कहना चाहता है, पर उसकी बात का कोई असर नहीं होता। ये दृश्य ताकत के उस खेल का, उस प्रभुत्व और अधीनता के पैटर्न का एक आखिरी कड़वा सच दिखाता है कि ये कितना पुराना है, कितना फैलावा है और शायद कभी खत्म नहीं होता। पुरानी सभ्यताओं के खंडरों के बीच भी ये चलता रहता है।
तो इस पूरी बिखरी हुई संरचना, इन किरदारों के जरिए नायपॉल कौन से बड़े विषय उठा रहे हैं? पहला तो साफ है, स्वतंत्रता का भ्रम, उसका बोझ।
बिल्कुल, संतोष, बॉबी, लिंडा सब यही दिखाते हैं। नायपॉल का शायद यही कहना है कि सच्ची आजादी सिर्फ राजनीतिक नहीं होती, उसके लिए पहचान चाहिए, समुदाय चाहिए, दुनिया में एक जगह चाहिए, और उपनिवेशवाद ने यह सब छीन लिया या तोड़ दिया।
किताब में एक जगह कहा भी गया है,
हाँ, कि एक मुक्त राज्य में आप सीखते हैं कि आप अकेले हैं, लेकिन यह सीखना एक भयानक बात है। यह अकेलापन ही जैसे मुक्ति की कीमत बन जाता है।
दूसरा बड़ा मुद्दा है विस्थापन और जड़हीनता, है ना?
निश्चित रूप से, हर किरदार कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से कटा हुआ है। संतोष, लंदन वाला कथावाचक, बॉबी, लिंडा, ये सिर्फ शारीरिक दूरी नहीं, ये गहरा मानसिक अलगाव है। नायपॉल इसे जैसे आधुनिक दुनिया की एक सच्चाई की तरह पेश करते हैं।
और वो अफ्रीकी देश वाला लघु उपन्यास, वो खास तौर पर पोस्ट कॉलोनियल बिखराव और अराजकता को दिखाता है।
हाँ, वो आजाद देश कोई स्वर्ग नहीं है, बल्कि टूट फूट है, हिंसा है, भ्रष्टाचार है। नायपॉल इसे सिर्फ नए नेताओं की नाकामी नहीं मानते, बल्कि उपनिवेशवाद की विरासत के तौर पर देखते हैं, जिसने बनावटी सरहदें बनाई, समुदायों को बांटा।
जैसा कि एक पात्र कहता है, दुनिया हमेशा बदलती रहती है।
और जो इस बदलाव का सामना नहीं कर सकते, वे कुचल दिए जाते हैं।
हाँ
इसके साथ ही जुड़ा है पहचान का दिखावा और आत्मधोखा, बॉबी का उदारवाद।
हाँ वो उसका मुखौटा है।
लंदन का कथावाचक जो भाई के लिए शहीद बनता है। नायपॉल ऐसी बनावटी पहचानों पर सवाल उठाते हैं। वो इन्हें एक तरह का सेल्फ डिसेप्शन मानते हैं, जो किरदारों को असलियत का सामना करने से रोकता है।
जैसे कहा गया है, हमने खुद को बनाया और हमें उसके साथ रहना होगा जो हमने बनाया है।
बिल्कुल, और आखिर में वो ताकत का खेल, पावर डायनामिक्स और रोजमर्रा की क्रूरता।
हाँ, वो छोटे छोटे जुल्म।
हाँ, सिर्फ देशों की ताकत नहीं, बल्कि एक इंसान का दूसरे पर हावी होना। प्रस्तावना के आवारा से लेकर बॉबी का बर्ताव, सैनिकों का जुल्म और अंत में मिस्र के वो लड़के। नायपॉल दिखाते हैं कि यह प्रवृत्ति कितनी आम है, कितनी गहरी है। शायद राजनीतिक व्यवस्था बदलने से ये खत्म नहीं होती।
इन सब बातों को कहने के लिए नायपॉल का अंदाज भी बहुत खास है, वो खंडित संरचना।
हाँ, वो बिखराव ही कहानी का हिस्सा है और आवाजें भी बदलती रहती हैं। कभी कोई बाहरी ऑब्जर्वर है, कभी किरदार खुद अपनी कहानी कह रहा है अविश्वसनीय तरीके से, कभी एकदम तटस्थ वर्णन।
और भाषा, आपने कहा सटीक, किफायती।
हाँ, बहुत कंट्रोल्ड, भावनाओं का खुला प्रदर्शन नहीं है और विडंबना, आयरनी का बहुत इस्तेमाल है।
मतलब जो कहा जा रहा है और जो असलियत है उसके बीच का फर्क।
बिल्कुल, जैसे बॉबी का लिबरलिज्म या संतोष की तथाकथित स्वतंत्रता, ये पाठक को किरदारों के आत्मधोखे को दिखाता है और पूरे उपन्यास में एक बेचैनी, एक अंधेरा सा माहौल बना रहता है।
प्रतीक भी बहुत हैं, जैसे यात्रा।
हाँ, वो यात्रा कोई मंजिल तक नहीं ले जाती, बल्कि बिखराव और मोहभंग को दिखाती है। वो कंपाउंड उस नकली सुरक्षा का प्रतीक है।
शरीर, खासकर बॉबी की पिटाई में, वो वल्नरेबिलिटी दिखाता है।
हाँ, और वो टूट फूट, वो जर्जरता, होटल, सड़कें, वो पुरानी व्यवस्था के ढहने और नई मुक्त अवस्थाओं की मुश्किल पैदाइश को दर्शाती हैं।
ये सब जानने के बाद पाठक पर इसका कैसा असर होता होगा? ये कोई हल्की फुल्की किताब तो नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। पढ़ने के बाद एक उदासी रहती है, एक बेचैनी, किरदारों के लिए हमदर्दी होती है, पर साथ ही इंसान की क्रूरता और खुद को धोखा देने की क्षमता देखकर थोड़ी सहरन भी होती है।
संतोष की वो बात फिर याद आती है, मैं किसी और का जीवन जी रहा था और मैं खुश था। अब मुझे अपना जीवन जीना था और कुछ भी वास्तविक महसूस नहीं हुआ। ये उस अस्तित्व के संकट को दिखाता है।
हाँ, जो किताब के केंद्र में है। और शायद सबसे स्थायी असर ये होता है कि ये किताब आजादी के बारे में जो हमारी रोमांटिक धारणाएं हैं उन्हें तोड़ती है,
सोचने पर मजबूर करती है कि सच में आजाद होने का मतलब क्या है। क्या इसके लिए घर चाहिए, समुदाय चाहिए, एक जुड़ा हुआ मैं चाहिए?
हाँ, और ये सवाल आज भी उतने ही मौजू हैं। दुनिया में इतना विस्थापन है, राजनीतिक उथल पुथल हैं, पहचान के संकट हैं।
तो इन अ फ्री स्टेट हमें दुनिया की कोई आसान सीधी तस्वीर नहीं देती, बल्कि उसकी उलझनों और विरोधाभासों से हमारा सामना कराती है।
और ये याद दिलाती है कि इतिहास की, अपनी निजी तकलीफों की, वो जो मन की जंजीरें हैं उन्हें तोड़ना अक्सर बाहरी राजनीतिक जंजीरों को तोड़ने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।